अरमान के जाने के बाद वहां सिर्फ माहिरा और जुबैदा बेगम ही रह गई थीं। हमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? पिछली बार ताई अम्मी और रिहाना बेगम ने कितना हंगामा किया था जब हमने उन्हें ओपनिंग सेरेमनी में नहीं बुलाया था। हमें ध्यान रखना चाहिए इस बार, माहिरा ने हल्की चिंता के साथ कहा। जुबैदा बेगम ने ठंडे लेकिन ठोस लहजे में जवाब दिया, करने दो जो करना है, मुझे तो सिर्फ अपने बेटे की फ़िक्र है, किसी और से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा रुककर उन्होंने आगे कहा, इससे पहले कि अरमान इस रिश्ते से मुकर जाए, उसकी सगाई करना ज़रूरी है। माहिरा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अम्मी, जो अरमान के लिए सही है वही करना चाहिए। जुबैदा बेगम ने उसकी बात सुनी, मगर उनके चेहरे से साफ था कि उन्होंने अपना फ़ैसला कर लिया है। चलो अब घर चलते हैं, बहुत सारे काम बाकी हैं, उन्होंने कहा। दोनों उठीं और बाहर की तरफ बढ़ गईं। दूसरी तरफ इकबाल फैज़ान को बस स्टैंड छोड़ने आया था। दोनों पास के एक ढाबे पर बैठकर चाय पी रहे थे। इकबाल ने बात शुरू की, कैसा आदमी है, बात बात पर आपको बुला लेता है। इकबाल ने अपने मन की बात कही थी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, असल में मुझे आपके बिना कोई ऐसा नज़र ही नहीं आता जिससे मैं सही सलाह ले सकूं। फैज़ान ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, जो इंसान अपनी बेटी का साथ देता है, खासकर बुरे वक्त में, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। इकबाल ने उसकी तरफ देखा जैसे उसे ये बात दिल तक लगी हो। मुझे पता है कि वो फेल हो जाएगी, मगर मैं अपने मुंह से ये नहीं कह सकता, मैं उसका हौसला नहीं तोड़ सकता। इकबाल ने धीमे मगर भारी लहजे में कहा, मैं नहीं चाहता कि ज़िंदगी में कभी नूर ये सोचे कि उसके पास पढ़ने का मौका था और उसके बाप ने सज़ा की तरह वो मौका उससे छीन लिया। वो मेरी पूरी दुनिया है। फैज़ान ने चाय की घूंट लेते हुए उसकी तरफ देखा, आपसे किसने कह दिया कि वो फेल हो जाएगी? इकबाल ने हल्का सा कड़वा मुस्कुराते हुए कहा, आप ही ने तो कहा था, पढ़ाई बहुत टफ है, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लाना भी उसके लिए मुश्किल होगा। फैज़ान ने सिर हिलाया, मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। फिर उसने थोड़ा झुककर कहा, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब इंसान के पास कोई मकसद होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। नूर की आंखों में मैंने आग देखी है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए भी सर उठाना चाहती है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। इकबाल की आंखें हल्की सी नम हो गईं। मैं अपनी बेटी के लिए हर मुश्किल रास्ता भी चुन सकता हूँ, बस एक ही दुआ है, अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। फैज़ान हल्का सा मुस्कुराया, नसीब भी उन्हीं का साथ देते हैं जो हिम्मत नहीं छोड़ते। कुछ पल खामोशी रही, फिर फैज़ान ने धीरे से कहा, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके पास नूर जैसी बेटी है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ना प्यार करने वाली माँ होती है ना साथ देने वाला बाप। उसकी आवाज़ में छुपा दर्द साफ महसूस हो रहा था, वो अपनी ही कहानी कह रहा था। तभी बस के हॉर्न की आवाज़ आई। लगता है मेरी बस आ गई, फैज़ान ने उठते हुए कहा। इकबाल भी खड़ा हो गया और एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया, ये रास्ते के लिए, नूर की अम्मी ने दिया है। फैज़ान ने पैकेट लिया, एक पल के लिए रुका, फिर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। किसी ने इतने अपनेपन से उसके लिए कुछ भेजा था, शायद बहुत वक्त बाद। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। वो बस में चढ़ गया। थोड़ी दूरी पर खड़ा साकेत ये सब देख रहा था, उसकी नज़रें लगातार नूर के घर पर ही टिकी हुई थीं। फैज़ान का ये दूसरा आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने चुपचाप फैज़ान की बस में चढ़ते हुए एक तस्वीर ले ली, उसके चेहरे पर साफ चलन थी। नूर उसे पसंद थी और वो अब भी उससे निकाह करना चाहता था। रिहाना बेगम और सादिया पहुंच चुके थे। आते ही उन्होंने अपना सामान कमरे में रख दिया। सादिया के चेहरे पर साफ खुशी थी, रिहान इंडिया से इतनी दूर आ चुका था। उसे लग रहा था कि अब नूर का मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन सादिया ये नहीं जानती थी कि रिहान का यहाँ आना उसका साथ देने के लिए नहीं था, बल्कि ये सब उनकी एक सोची समझी चाल का हिस्सा था, सादिया की प्रॉपर्टी हथियाने की चाल। उधर रिहान ने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। कहाँ हो तुम, उसने ठंडे लहजे में पूछा। सामने से जवाब आया। रिहान ने तुरंत कहा, जल्दी से सिद्धपुर जाओ, नूर का कस्बा, नूर का शहर, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, पूरी नज़र रखना उनके घर पर। असल में रिहान ने पहले ही एक आदमी को हायर कर लिया था नूर पर नज़र रखने के लिए। वो इंडिया छोड़ चुका था मगर नूर का पीछा छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए उसने हर पल की खबर निकालने के लिए आदमी लगा रखा था। सामने से आवाज़ आई, सर आपने जो गोदाम दिया था वहां से सब पर नज़र रख रहा हो। रिहान का गुस्सा भड़क उठा, मैंने जो कहा है वो करो, मुझे गोदाम और कंटेनर की रिपोर्ट नहीं चाहिए, सीधे सिद्धपुर जाओ और नूर पर नज़र रखो, समझे? जी समझ गया, सामने वाले ने जवाब दिया। वो आदमी काले रंग का, लंबा और ख़तरनाक शक्ल वाला था, ऐसे काम उसके लिए नए नहीं थे। काफ़ी समय से वो रिहान के गोदाम में काम कर रहा था और अब उसका अगला निशाना था नूर। रिहान ने फ़ोन पर सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें तीन तस्वीरें भेज रहा हूँ, ध्यान से देखना, इनमें से कौन कहाँ जाता है हर हरकत पर नज़र रखनी है, और इस बार सिर्फ बाहर नहीं उनके घर पर भी नज़र रखना, कौन आता है कौन जाता है सब पता होना चाहिए। वो एक पल रुका, फिर धीमे मगर खतरनाक अंदाज में बोला, अगर इस लड़की का रिश्ता कहीं पक्का हो रहा है तो मुझे सबसे पहले खबर मिलनी चाहिए, समझे? ठीक है सर, मैं सुबह निकल जाता हूँ, खलील ने जवाब दिया। सुबह क्यों? रिहान की आवाज़ अचानक सख्त हो गई। अभी के अभी निकलो। सर, रात है, कहीं कैमरा मिल गया तो? रेहान ने उसकी बात काट दी। एक रात गाड़ी में सोने से कोई मर नहीं जाता। जो कहा है वो करो, अभी निकलो और सीधे उसके घर पहुंचो। नजर रखो। फिर उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। अगर उसके घर पर किसी और की नजर पड़ी ना तो आंखें निकाल दूंगा तुम्हारी, समझे? खलील घबरा गया। जी सर, अभी निकलता हूँ। और सुनो, रेहान ने आखिरी बार कहा, व्हाट्सएप ऑन रखना, कोई भी बात हो वहीं अपडेट देना। कॉल कट हो गई। उसी वक्त सादिया वॉशरूम से कपड़े बदल कर बाहर आई। उसने रेहान की तरफ देखा और शक भरे लहजे में पूछा, किसके घर पर नजर रखवा रहे हैं आप? रेहान ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर बिल्कुल सामान्य बनते हुए बोला, एक प्लॉट खरीदना है, मालिक मान नहीं रहा, उसी पर नजर रखवा रहा हूँ। सादिया हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में शक साफ था। अच्छा, आपको प्लॉट दिखता है और मुझे घर सुनाई देता है। वो उसकी तरफ बढ़ी और धीमे से बोली, मुझे समझने में देर नहीं लगती रेहान, आप अब भी नूर के पीछे हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रेहान ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी ही सब कुछ बयान कर रही थी। एक्चुअली तुमने ठीक ही सुना, रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगी हुई है, इसलिए ब्रोकर उसे घर कह रहे हैं। सादिया ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर सीधा सवाल किया, जब वो बेचना ही नहीं चाहते तो आप खरीदने की जिद क्यों कर रहे हैं? रेहान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा ठहराव था। मालिक को उसकी असली कीमत का अंदाजा नहीं है, उसने धीमे मगर यकीन भरे लहजे में कहा, एक बार वो मेरे पास आ जाए उसकी किस्मत बदल दूंगा। वो जगह की नहीं नूर की बात कर रहा था, उसे वो प्लॉट नहीं नूर चाहिए थी। सादिया हल्का सा मुस्कुराई, मगर इस बार उसकी आवाज और गहरी थी। अगर उन्हें अपनी चीज की कीमत नहीं पता होती तो वो उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल नहीं बनाते। वो एक कदम आगे बढ़ी। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। रेहान की आंखों में हल्का सा गुस्सा उभरा। वो बाउंड्री वॉल सिर्फ मुझे रोकने के लिए है, वरना अंदर की चीज लोगों को किराए पर दी जा रही है। वो बोलते बोलते रुक गया। उसकी आवाज में अब जुनून साफ झलक रहा था। साफ था कि वो कोई जमीन नहीं बल्कि किसी इंसान को हासिल करने की बात कर रहा हो। खाना ऑर्डर कर दो, सादिया ने कहा। वो बात यहीं खत्म करना चाहती थी,
लेकिन रेहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। घर पर मैसेज कर दो कि हम पहुंच गए हैं, बस इतना कहकर वो उठ गया और सिटिंग एरिया की तरफ चला गया। सादिया उसे जाते हुए देखती रही।